लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पोप फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। बुधवार को पोप फ्रांसिस ने जुबली 2025 यीशु ख्रिस्त हमारी आशा पर धर्म शिक्षा माला में आगे बढ़ते हुए यीशु के जीवन और उनके दृष्टांत पर चिंतन किया। बीमारी के बाद कमजोर स्थिति में होने के कारण आम दर्शन समारोह आयोजित नहीं होने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, जिसे यीशु ने स्वर्ग के पिता की असीम करुणा और मानव की प्रेम की भूख को समझाने के लिए बतलाया था, 16 अप्रैल की धर्म शिक्षा में पोप के चिंतन का केंद्र बिंदु रहा। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी उठा है, वह जो खो गया था वह मिल गया है। अपने चिंतन की शुरुआत संत पापा ने दृष्टांत के इसी छोटे अंश को लेते हुए की। संत पापा ने विश्वासों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार में कुछ पात्रों के साथ यीशु की मुलाकातों पर चिंतन करने के बाद मैं इस धर्म शिक्षा से आरंभ करते हुए कुछ दृष्टांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, ये कहानियां रोजमर्रा की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित हैं। यही कारण है कि वे हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वे हमें प्रेरित करते और हमें अपना स्थान खोजने के लिए कहते हैं कि मैं इस कहानी में कहाँ हूँ। आइए हम सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत से शुरू करें, जिसको हम सभी शायद बचपन से ही याद करते हैं, पिता और दो पुत्रों का दृष्टांत। इसमें हम यीशु के सुसमाचार का सार अर्थात ईश्वर की करुणा को पाते हैं। सुसमाचार लेखक लूकस कहते हैं कि यीशु ने यह दृष्टांत फरीसियों और शास्त्रियों को सुनाया था, जो शिकायत कर रहे थे कि यीशु पापियों के साथ भोजन करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो खोए हुए हैं, पर वे उसे नहीं समझते और दूसरों पर दोष लगाते हैं। संत पापा ने कहा, सुसमाचार हमें आशा का संदेश देना चाहता है, क्योंकि यह हमें बतलाता है कि हम चाहे कहीं भी खो जाएं, चाहे हम किसी भी तरह से खो जाएं, ईश्वर हमेशा हमें ढूंढने आते। शायद हम भेड़ों की तरह रास्ता छोड़कर चरने के लिए भटक गए हों या थकान के कारण पीछे रह गए हों, या शायद हम उस सिक्के की तरह खो गए हों जो जमीन पर गिर गया हो और अब उसे ढूंढा नहीं जा सकता, या किसी ने उसे कहीं रख दिया हो और अब याद नहीं है कि वह कहाँ है, या फिर हमने अपने आप को इस पिता के दो बेटों की तरह खो दिया है। छोटा बेटा जो एक ऐसे रिश्ते से थक गया था जो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मांग रहा था, दूसरी ओर बड़ा बेटा भी भटक गया था, क्योंकि अगर दिल में घमंड और आक्रोश हो तो घर पर रहना मात्र काफी नहीं है। वास्तव में प्रेम सदैव एक प्रतिबद्धता है। दूसरे से मिलने के लिए हमें सदैव कुछ न कुछ खोना पड़ता है, लेकिन दृष्टांत में छोटा बेटा केवल अपने बारे सोचता है, जैसा कि बचपन और किशोरावस्था में कुछ चरणों में होता है। हकीकत में हम अपने आसपास ऐसे कई वयस्कों को भी देखते हैं जो स्वार्थी होने के कारण रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाते। वे यह सोचकर स्वयं को धोखा देते हैं कि वे अपने हित पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं को खो देते हैं, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए जीते हैं तभी हम वास्तव में जीते हैं। संत पापा ने कहा, यह छोटा बेटा हम सभी की तरह स्नेह का भूखा है। वह प्यार पाना चाहता है, लेकिन प्रेम एक अनमोल उपहार है। इसे सावधानी से संभालना चाहिए, लेकिन वह इसे बर्बाद कर देता है। खुद के मूल्य को कम आंकता और खुद का सम्मान नहीं करता है। बाद में वह अकाल के समय इस बात को महसूस करता है, जब कोई उसकी परवाह नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में खतरा यह होता है कि हम स्नेह की भीख मांगने लगते हैं और हम अपने सामने आने वाले पहले मालिक से ही जुड़ जाते हैं। यही अनुभव है जो हमारे भीतर इस विकृत विश्वास को जन्म देता है कि हम किसी रिश्ते में केवल नौकरों के रूप में रह सकते हैं। मानो हमें किसी पाप का प्रायश्चित करना हो, या मानो सच्चा प्रेम अस्तित्व में है ही नहीं। वास्तव में जब छोटा बेटा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तो वह अपने पिता के घर लौटकर जमीन पर पड़े स्नेह के कुछ टुकड़े बटोरने के बारे सोचता है। संत पापा ने कहा, वे ही हैं जो हमें सच्चा प्रेम करते हैं, हमें प्रेम की इस झूठी धारणा से मुक्त कर सकते हैं। ईश्वर के साथ हमारे संबंध में हमें यही अनुभव होता है। महान चित्रकार रेम्ब्रांट ने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग में उड़ाव पुत्र की वापसी का अद्भुत चित्रण किया है, जिसमें दो विवरण विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। युवक का सिर मुड़ा हुआ है, जैसे कि किसी पश्चातापी का होता है, लेकिन यह एक बच्चे के सिर जैसा भी दिखता है, क्योंकि यह बच्चा दोबारा जन्म ले रहा है। और फिर पिता का हाथ एक पुरुष और दूसरा महिला के रूप में, जो क्षमा के आलिंगन में शक्ति और कोमलता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी ओर बड़े बेटे पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, लेकिन यह बड़ा पुत्र भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके लिए यह दृष्टांत कहा गया है। एक ऐसा पुत्र है जो हमेशा अपने पिता के साथ घर में रहते हुए भी उनसे दूर था, दिल से दूर था। शायद यह बेटा भी जाना चाहता था, लेकिन डर या कर्तव्य के कारण उस रिश्ते में वहीं रह गया। संत पापा ने गौर किया कि जब अनिच्छा से कोई चीज करने की कोशिश की जाती है, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध पनपने लगता है और देर सवेर यह क्रोध फूट पड़ता है। यहाँ विडम्बना यह है कि अंधता बड़ा बेटा ही घर से बाहर होने की जोखिम में हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता की खुशियों में भागीदार नहीं हो पाता। पिता उससे भी मिलने के लिए बाहर आते हैं, वे उससे डांटते नहीं, ना ही उससे काम पर बुलाते हैं। वे बस यही चाहते हैं कि वह उनके प्यार को महसूस कर सके। वे उससे अंदर बुलाते और दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। संत पापा ने कहा कि वह दरवाजा हमारे लिए भी खुला है। वास्तव में यही आशा का कारण है। हम आशा रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें दूर से देख रहे हैं तथा हमेशा दरवाजा खुला रखे हैं। अंत में संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए विश्वासियों से कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने आप से पूछें कि इस अद्भुत कहानी में हम कहाँ हैं, और हम पिता ईश्वर से यह कृपा मांगे कि हम घर वापस लौटने का रास्ता खोज सकें। श्रोताओं, हम संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा सुन रहे थे, जिसको उन्होंने लिखित रूप में विश्वासियों को दिया है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें
I'm not afraid to die। आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने आज सुबह लगभग 20 मिनट तक संत पापा पोल सिस्टम हॉल के पीछे वाले कमरे में जमेली पॉलीक्लिनिक, कैथोलिक विश्वविद्यालय और वाटिकन सिटी के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निर्देशालय के शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों सहित लगभग 70 लोगों का स्वागत किया। संत पापा ने उन्हें प्राप्त देखभाल और सहायता के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, अस्पताल में सेवा के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया, इसे जारी रखें। जमेली से छुट्टी मिलने के लगभग एक महीने बाद संत पापा फ्रांसिस पॉलीक्लिनिक के समुदाय से मिलना चाहते थे, जो द्विपक्षीय निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 38 दिनों के लिए उनका निवास स्थान बन गया था। यद्यपि वे सांता मार्ता में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और संत पेत्रुस महागिरजाघर और प्रांगण का दौरा करने के अलावा उन्होंने अभी तक अपनी सार्वजनिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, तथापि संत पापा फ्रांसिस उन लोगों के साथ एक सामूहिक क्षण का आयोजन करना चाहते थे जिन्होंने उनकी बीमारी के दौरान उनकी सहायता की थी और उनकी देखभाल की थी। और मंगलवार को प्रकाशित एक दस्तावेज में संत पापा फ्रांसिस ने पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम को नवीनीकृत किया, जिसे अकादेमिया के रूप में जाना जाता है, जो परम धर्म पीठ के राजनयिकों को उनके काम के लिए तैयार करता है। पेट्रिन मंत्रालय नामक एक नए दस्तावेज में संत पापा फ्रांसिस ने पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अद्यतन किया है, जिसे अकादेमिया के रूप में जाना जाता है, जिसने 300 से अधिक वर्षों से पुरोहितों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने संत पापा के प्रतिनिधियों और राज्य के सचिवालय के पेट्रिन मंत्रालय में अपनी सेवा दी है। नए शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य संत पापा के प्रतिनिधियों को दुनिया भर के देशों में अपने राजनयिक मिशन को पूरा करने और लगातार बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए एक ठोस और निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ध्यान से सुनना, गवाही देना, भाईचारे का दृष्टिकोण और संवाद के मौलिक गुण हमेशा उन लोगों में मौजूद हो जो प्रेरितिक राजदूतावास में सेवा देते हैं। संत पापा फ्रांसिस के अनुसार ये परम धर्म पीठ की कूटनीतिक गतिविधि और संचालन करने, मध्यस्थता करने, बाधाओं को दूर करने और इस प्रकार सभी विश्वासियों के लिए शांति और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देने और राष्ट्रों के बीच व्यवस्था के लिए संवाद और बातचीत के ठोस रास्ते विकसित करने की इसकी क्षमता के अतिरिक्त घटक तत्व हैं। उधर युद्ध और हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के कारण म्यांमार में मानवीय संकट के बावजूद देश में कलीसिया इस पवित्र सप्ताह में विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ रही है, भले ही इसका मतलब ढह चुके गिरजाघरों और मलबों के सामने धार्मिक अनुष्ठान हो। फिदेस के अनुसार भले ही म्यांमार 2021 के तख्तापलट के बाद से चल रहे गृह युद्ध से चिन्हित एक गहराते संकट का सामना कर रहा हो, जो मार्च 28 को आए भूकंप से और भी तनावपूर्ण हो गया हो, जिसमें 3,500 से अधिक लोगों की जानें चली गई, लेकिन देश में कलीसिया इस पवित्र सप्ताह में विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ रही है। यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने महागिरजाघर में खजूर रविवार के पवित्र मिसा समारोह के दौरान याद किया कि यह उत्सव शांति, आनंद और आशा का उत्सव है, जिसके लिए सभी को आनंदित होना चाहिए। हमारे देश को प्रभावित करने वाले बहु संकट के संदर्भ में जहां हम ईश्वर से पुकारते हैं और पूछते हैं, यह पीड़ा क्यों? उन्होंने स्वीकार किया कि हम अभी भी विश्वास से जानते हैं कि हमारे लिए ईश्वर का उत्तर पुनरुत्थान है। कार्डिनल ने विश्वासियों से कठिनाइयों और अनिश्चितता के बीच प्रभु से चिपके रहने का आग्रह किया, यह सुझाव देते हुए कि केवल वे ही एकता का निर्माण कर सकते हैं और प्रकाश से भरा भविष्य प्रदान कर सकते हैं। मांडले धर्म प्रांत में विश्वास और आशा के प्रतीक के रूप में मलबे के बीच खजूर रविवार का मिसा समारोह मनाया गया। लूर्द की माता मरियम के ऐतिहासिक गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर जॉन ने समुदाय को तबाह हो चुके गिरजाघर के मलबे के सामने इकट्ठा किया और उन्होंने जोर देकर कहा, गिरजाघर नष्ट हो गया है लेकिन बपतिस्मा लेने वालों का विश्वास दृढ़ है। यह चट्टान पर स्थापित घर की तरह है। उन्होंने कहा, जब भी हम क्रूस को देखें और उसे उठाएं, तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु येसु क्रूस पर हैं और हमारे दुखों के बीच प्रभु येसु हमेशा हमारे साथ हैं। चूंकि संघर्ष कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभावित करना जारी रखता है, नागरिक हताहतों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कलीसिया संकट में फंसे समुदायों के लिए समर्थन और आशा का स्रोत बनी हुई है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी प्रांतों में हिस्सा के बढ़ने के साथ ही बुटेम्बो बेनी के धर्माध्यक्ष मेल्किसेदेक सिकुली ने विश्वासियों से उम्मीद न खोने का आह्वान किया। खजूर रविवार मिस्सा के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि हमें कभी भी विश्वास खोना नहीं चाहिए, चाहे हमारे साथ जो कुछ भी हो जाए। जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, तब भी ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। धर्माध्यक्ष मेल्किसेदेक ने उत्तरी किवू क्षेत्र में संघर्ष के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिनमें से कई अक्सर व्यापक दुनिया द्वारा भुला दिए जाते हैं। उन्होंने ख्रिस्तियों को आशा के साक्षी बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर पुष्टि करते हुए कि इतिहास में बुराई का अंत नहीं होगा। यह क्षेत्र गंभीर तनाव में है, जबकि बुटेम्बो शहर और बेनी का इलाका अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। M23 विद्रोही समूह ने प्रांतीय राजधानी गोमा पर नियंत्रण कर लिया है। गोमा में 11 और 12 अप्रैल की रात को शहर के पश्चिमी क्षेत्रों में हुए झड़पों के दौरान कम से कम 50 लोग मारे गए। कोंगो की सेना और M23 के विद्रोही दोनों ने हिंसा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लड़ाई तब शुरू हुई जब सरकार समर्थक वाजालेंडो मिलिशिया के सदस्यों ने शहर के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। इन सशस्त्र समूहों, विशेष रूप से वाजालेंडो का नियंत्रण उत्तर और दक्षिण किवू दोनों में चिंता का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।